नमस्कार, कार्यक्रम सत्य वचन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। प्रिय श्रोताओ, इन दिनों हम पवित्र शास्त्र बाइबल में से दूसरी पुस्तक का अध्ययन कर रहे हैं, जिसका नाम है निर्गमन। हम आशा करते हैं कि इस पुस्तक से आपको आत्मिक लाभ मिलेगा। तो आइए, अपने वक्ता के साथ आज के इस अध्ययन में हम सम्मिलित हों, लेकिन इससे पहले आइए सुने ये मधुर गीत।
चलो से ये संदेश आ। प्रिय मित्र, प्रभु यीशु के पवित्र और मधुर नाम में आप सबको मेरा नमस्कार मिले। मैं विश्वास करता हूँ कि आप सब प्रभु की दया से स्वस्थ और भले चंगे हैं और आज भी प्रतिदिन की तरह प्रभु के वचन में से सुनने के लिए तैयार बैठे हैं। मित्रों, आइए हम आज के इस अध्ययन को आरंभ करने से पहले प्रार्थना करें। हमारे जीवित और सामर्थ्य पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर दिन के लिए जिसे आपने हमें दिया है ताकि हम आपके जीवित वचन का अध्ययन कर सकें। इस समय जब हम आपके जीवित वचन में से सीखना चाहते हैं, मनन चिंतन करना चाहते हैं, प्रेम पिता परमेश्वर, हमारे हरेक श्रोता भाई बहनों को आप अपनी बुद्धि, ज्ञान और समझ दें ताकि जो कुछ भी आज हम आपके वचन से सीखते हैं निश्चित रूप से हम में से हरेक के जीवन से बातचीत करने पाए। पवित्र आत्मा, आप हमारे शिक्षक हो। हमारी विनती है विशेष करके उन भाई बहनों के लिए जो दुखी और निराश हैं, चिंता व परेशानी में हैं या किसी प्रकार की समस्या में हैं, प्रभु आप उनसे उन्हें छुटकारा दें, अपनी शांति और आनंद दें ताकि वे आप में बलवंत हो सकें। इस समय हम इसे हरेक को आपके हाथ में सौंप देते हैं। प्रार्थना अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मित्रों, पिछले अध्ययन में हमने याजकों के पवित्र वस्त्र एपोद, सीनाबंद और अन्य याजकीय वस्त्रों के बारे में जाना और इस अध्याय में हम देखेंगे याजकों के अभिषेक और बलि के अनुष्ठान, भेंट और इसराइल के वंशजों के मध्य परमेश्वर के वास करने की प्रतिज्ञा। हम सबसे पहले देखते हैं याजकों का अभिषेक। मित्रों, अध्याय 29 एक बड़ा अध्याय है और पढ़ने के लिए जैसा चाहिए वैसा रोचक और उत्साहवर्धक नहीं है। फिर भी मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर का आत्मा इसके द्वारा हमें वचन की सेवकाएं प्रदान करना चाहता है। यह हमारे लिए परमेश्वर की प्रारंभिक पुस्तक और इसमें गहन आत्मिक शिक्षा विदित की गई है। हम निर्गमन की पुस्तक उसके 29 अध्याय और 1 पद में पढ़ते हैं, और उन्हें पवित्र करने को जो काम तुझे उनसे करना है कि वे मेरे लिए याजक का काम करें वह यह है, एक निर्दोष बछड़ा और दो निर्दोष मेढ़े लेना। मित्रों, विश्वासियों के लिए पवित्रीकरण कोई ऐसी कार्य नहीं है जो स्वयं करता है। यह एक ऐसा कार्य है जो परमेश्वर हमारे लिए करता है और यह मसीह के परिष्कृत कार्य पर आधारित है। हम निर्गमन 29 उसके 2-4 पद में पढ़ते हैं, लिखा है, और अखमीरी रोटी और तेल से सने हुए मैदे के अखमीरी फुलके और तेल से चुपड़ी हुई अखमीरी पपड़ियां भी लेना। ये सब गेहूं के मैदे के बनवाना। इनको एक टोकरी में रखकर उस टोकरी को उस बछड़े और उन दोनों मेढ़ों समेत समीप ले आना। फिर हारून और उसके पुत्रों को मिलाप वाले तंबू के द्वार के समीप ले आकर जल से नहलाना। मित्रों, स्नान करना नए जन्म का प्रतीक है। तीतुस की पत्री 3:5 पद में लिखा है, तो उसने हमारा उद्धार किया और यह धर्म के कामों के कारण नहीं जो हमने आप किए, पर अपनी दया के अनुसार नए जन्म से स्नान और पवित्र आत्मा के हमें नया बनाने के द्वारा हुआ है। इस पद में स्नान से तात्पर्य है नया जन्म। आगे अब मूसा हारून को वस्त्र पहनाता है। निर्गमन 29 उसके 5-9 पद में हम पढ़ते हैं, लिखा है, तब उन वस्त्रों को लेकर हारून को अंगरखा और एपोद का बाग पहनाना और एपोद और चपरास बांधना और एपोद का काढ़ा हुआ पटुका भी बांधना और उसके सिर पर पगड़ी को रखना और पगड़ी पर पवित्र मुकुट को रखना। तब अभिषेक का तेल ले उसके सिर पर डालकर उसका अभिषेक करना। फिर उसके पुत्रों को समीप ले आकर उनको अंगरखे पहनाना और उनके अर्थात हारून और उसके पुत्रों के कमर बांधना और उनके सिर पर टोपियां रखना जिससे याजक के पद पर सदा उनका हक रहे। इसी प्रकार हारून और उसके पुत्रों का संस्कार करना। मित्रों, पवित्रीकरण परमेश्वर के द्वारा होता है न कि हमारे द्वारा। मैं आज पवित्रीकरण सभाओं के बारे में बहुत अधिक सुनता हूँ जहाँ लोग कुछ करने की प्रतिज्ञा करते हैं। मैंने बीते समय में परमेश्वर से बड़ी बड़ी बातों की प्रतिज्ञा की थी परंतु सफल नहीं हो सका। मैं इसे पवित्रीकरण स्वीकार करना नहीं चाहता। यह मेरी ओर से परमेश्वर को प्रतिज्ञा देना नहीं है। पवित्रीकरण का अर्थ वास्तव में यह है कि मैं परमेश्वर के पास खाली हाथ आता हूँ और अपनी दुर्बलता तथा अयोग्यता को स्वीकार करता हूँ और फिर सब कुछ उसके हाथों में छोड़ देता हूँ कि जो कुछ करना है वही करे। मित्रों, यदि आपने पुराने नियम में विदित मूसा, एलिया, दाऊद और शमूएल तथा नए नियम में पौलुस प्रेरित की प्रार्थनाओं को पढ़ा है तो आप देखेंगे कि ये लोग परमेश्वर के पास इस आधार पर नहीं आए कि वे क्या थे, वे कौन थे, उन्होंने परमेश्वर से क्या प्रतिज्ञा की थी। मैंने बहुत सभाओं में भाग लिया और मैंने लोगों को देखा है कि जो परमेश्वर के लिए कार्य करने की गवाही देते हैं मैंने ऐसी सभाओं में परमेश्वर के लिए महान कार्य करने की बड़ी बड़ी प्रतिज्ञाएं लोगों के मुंह से सुनी है, परंतु दुर्भाग्य से बहुत सी प्रतिज्ञाएं पूरी नहीं हो पाई, क्योंकि परमेश्वर को देने के लिए वास्तव में हमारे पास कुछ भी नहीं है। क्या हमारे पास कुछ है? शायद आपके पास उसे देने के लिए कुछ भेंट हो, परंतु मेरे पास कुछ नहीं है। वस्तु स्थिति तो यह है कि हमें उसके पास खाली हाथ जाना है और अपेक्षा करनी है कि वे उसे भर दे। पवित्रीकरण की बलि, निर्गमन की पुस्तक 29 अध्याय उसके 10 पद में हम पढ़ते हैं, और बछड़े को मिलाप वाले तंबू के सामने समीप ले आना, और हारून और उसके पुत्र बछड़े के सिर पर अपने अपने हाथ रखें, महायाजक और उसका परिवार अपना हाथ बछड़े पर रखे। बहुत से लोग मानते हैं कि हाथ रखने से कुछ जादू या आत्मिक शक्ति का प्रवाह होता है। ऐसा कुछ नहीं होता। हाथ रखने का यह अर्थ नहीं है। किसी दूसरे पर हाथ रखने से आप केवल बीमारी के कीटाणु को उसे प्रदान कर सकते हैं। किसी जानवर पर हाथ रखने का अर्थ है उससे अपनी पहचान बनाना। जब कोई पापी वेदी के पास आता है और उसके द्वारा लाए गए पशु के सिर पर हाथ रखता है, तो उसका अर्थ यह होता था कि उस जानवर ने उसका स्थान ले लिया है। मित्रों, मैंने एक स्थान पर कई वर्षों तक सेवा किया। जब कोई प्रचारक अपनी सेवा के कार्यों के लिए बाहर जाता था, तब हम पवित्रीकरण की सभा का आयोजन करते थे कि उन्हें सेवा के लिए अलग करें। हम अपना हाथ उस पर रखते थे, परंतु मैंने अब तक उनमें कुछ भी प्रवाहित नहीं किया है। इसका एकमात्र उद्देश्य यह था कि उनके साथ अपनी पहचान बनाई जाए। वे कार्य क्षेत्र में हमारा प्रतिनिधित्व करते थे। मैं यही मानता हूं कि जब कभी भी किसी प्रचारक के सिर पर हाथ रखता हूं, तो इसका अर्थ है कि वह सेवा में मेरे साथ एक है, और यह मेरा उत्तरदायित्व बन गया है कि मैं उसके लिए प्रार्थना करूं और उसे सहयोग दूं। सिर पर हाथ रखने का वास्तविक अर्थ यही है। यहां बछड़ा हारून का स्थान ले लेता है। वह हारून के स्थान पर मरेगा, क्योंकि हारून पापी है। यह पाप बलि थी। हम इसके विषय लय व्यवस्था की पुस्तक में अधिक विस्तार से पढ़ेंगे। मित्रों, अदन की वाटिका में भी पाप बलि चढ़ाई गई थी। हमने जो पीतल की वेदी देखी थी, वह होम बलि की वेदी भी कहलाती थी, क्योंकि वहां मुख्य बलि चढ़ाई जाती थी, जो सर्वप्रथम किया जाने वाला अनुष्ठान था। यह मसीह के मनुष्यत्व का प्रतीक था कि वह कौन है। वेदी यह दर्शाती है कि उसने हमारे लिए क्या किया। अब हम आगे देखते हैं याजकों का भोजन। निर्गमन की पुस्तक 29 अध्याय उसके 26 और 27 पद में हम इस प्रकार से पढ़ते हैं, जहां पर लिखा है, फिर हारून के संस्कार का जो मेढ़ा होगा उसकी छाती को लेकर हिलाए जाने की भेंट के लिए यहोवा के आगे हिलाना, और वह तेरा भाग ठहरेगा। और हारून और उसके पुत्रों के संस्कार का जो मेढ़ा होगा उसमें से हिलाए जाने की भेंट वाली छाती जो हिलाई जाएगी, और उठाए जाने का भेंट वाला पुट्ठा जो उठाया जाएगा, इन दोनों को पवित्र ठहराना। मित्रों, लय व्यवस्था की पुस्तक में आप इसे देखेंगे कि बलि का एक भाग हारून और याजकों को दिया जाता था। लेवियों की खेती करने के लिए देश में कोई भी भूमि नहीं दी गई थी, अतः परमेश्वर उन्हें इसी प्रकार जीवन निर्वाह की व्यवस्था करता है। लेवियों का उत्तरदायित्व था कि वे मिलाप वाले तंबू में सेवा करें। मंदिर निर्माण के पश्चात वे मंदिर में सेवा करते थे, और जितनी भी बलि वहां चढ़ाई जाती थी उनका एक भाग उनको दिया जाता था। तब हम आगे देखते हैं दैनिक भेंट। दैनिक भेंट का प्रतिदिन लाया जाना अनिवार्य था। निर्गमन की पुस्तक 29 अध्याय 38 से 40 पद में हम पढ़ते हैं, जो तुझे वेदी पर नित्य चढ़ाना होगा वह यह है, अर्थात प्रतिदिन एक वर्ष के दो भेड़ी के बच्चे, एक भेड़ के बच्चे को तो भोर के समय और दूसरे भेड़ के बच्चे को गोधूली के समय चढ़ाना, और एक भेड़ के बच्चे के संग हीन की चौथाई कूट के निकाले हुए तेल से सना हुआ एपा का दसवां भाग मैदा, और अर्घ के लिए हीन की चौथाई दाख मधु देना। लय व्यवस्था की पुस्तक इसका भी विवरण हमें प्रदान करेगी। यह भेंट दैनिक बलिदान थी। सुबह एक भेड़ का बच्चा और संध्या काल में दूसरा भेड़ का बच्चा। यह इस तथ्य का प्रतीक था कि वे सदा स्मरण रखें कि उनके स्थान पर किसी को मरना था। उनके पापों का दंड मृत्यु था। पापों के लिए और लहू का बहाया जाना अनिवार्य था। इब्रानियों की पुस्तक 9 अध्याय उसके 26 पद में हम पाते हैं जो इस तथ्य को उजागर करती है, नहीं तो जगत की उत्पत्ति से लेकर उसको बार बार दुख उठाना पड़ता, पर अब युग के अंत में वह एक ही बार प्रकट हुआ है ताकि अपने ही बलिदान के द्वारा पाप को दूर कर दे। मित्रों, यह पद निसंदेह प्रभु यीशु मसीह के बलिदान के बारे में कह रहा है। बछड़े, बकरे और मेढ़ों का लहू पापों का निवारण नहीं कर पाया, परंतु मसीह यीशु के लहू ने किया है। उसका बलिदान परिपूर्ण था। प्रभु ने पाप का परिपूर्ण निवारण किया है। वह केवल एक ही बार मरा। वह युग के अंत में एक ही बार प्रकट हुआ कि अपने स्वयं के बलिदान के द्वारा पाप का निवारण करे। मित्रों, यहाँ पर यह अध्याय समाप्त होता है और अब हम अपने अध्ययन को 30 अध्याय से जारी रखेंगे और इसमें हम इन मुख्य विषयों पर विचार करेंगे, जैसे आराधना, धूप की वेदी। मित्रों, यह आराधना का एक अति उत्तम अध्याय है। मिलाप वाले तंबू के पहले कक्ष पवित्र स्थान में हम 3 सामग्रियां देखते हैं। ये सब आराधना के प्रतीक हैं। हमने दीपदान और रोटी की मेज के बारे में देखा है। यहाँ एक और सामग्री, एक वेदी, यह धूप जलाने वाली वेदी है। भेंट की रोटी की मेज और सोने का दीपदान परमेश्वर की प्रजा का एक साथ आना और सहभागिता करना दर्शाता है। यह व्यर्थ की बातें करने के लिए जमा होना नहीं, परंतु मसीह की देह को ग्रहण करना है। यह एक भोज है। आगे हम देखते हैं, धूप वेदी प्रार्थना का स्थान था। निर्गमन 30 उसके 1 और 2 पद में हम पढ़ते हैं, फिर धूप जलाने के लिए बबूल की लकड़ी की वेदी बनाना, उसकी लंबाई 1 हाथ और चौड़ाई 1 हाथ की हो, वह चौकोर हो और उसकी ऊंचाई 2 हाथ की हो। मित्रों, निर्देशों के आधार पर ऐसा प्रतीत होता है कि यह एक छोटी वेदी थी। तब हम आगे पढ़ते हैं, निर्गमन 30 उसके 3 और 4 पद में लिखा है, और वेदी के ऊपर वाले पल्ले और चारों ओर की आलंगों और सींगों को चोखे सोने से मढ़ना और इसकी चारों ओर सोने की एक बाड़ बनाना और इसकी बाड़ के नीचे इसके दोनों पल्ले पर सोने के 2-2 कड़े बनाकर इसके दोनों ओर लगाना, वे इसके उठाने के डंडों के खानों का काम देंगे। मित्रों, इस छोटी सी सज्जा पर भी कड़े लगे थे कि उनमें डंडे डालकर याजक इस वेदी को अपने कंधों पर उठा पाए। गिनती की पुस्तक में हमें बताया गया है कि जंगल में जब वे एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते थे, तब वे तंबू के सामान को कंधों पर उठाकर ले जाते थे। हम निर्गमन 30 उसके 6 पद में पढ़ते हैं, और तू उसको उस पर्दे के आगे रखना जो साक्षी पत्र के संदूक के सामने है, अर्थात प्रायश्चित वाले ढकने के आगे जो साक्षी पत्र के ऊपर है, वहीं मैं तुझसे मिला करूंगा। मित्रों, यह वेदी उस पर्दे के आगे रखी हुई थी जो साक्षी पत्र के संदूक के सामने था। यह पवित्र स्थान में थी जो आराधना स्थल था। हम निर्गमन 30 उसके 7 और 8 पद में आगे पढ़ते हैं, जहां पर लिखा है, और उसी वेदी पर हारून सुगंधित धूप जलाया करे। प्रतिदिन भोर को जब वह दीपक को ठीक करे, तब वह धूप को जलाए। तब गोधूली के समय जब हारून दीपकों को जलाए, तब धूप जलाया करे। यह धूप यहोवा के सामने तुम्हारी पीढ़ी पीढ़ी में नित्य जलाया जाए। मित्रों, यह बलि की वेदी नहीं थी। हम निर्गमन 30 उसके 9 पद में आगे पढ़ते हैं, और उस वेदी पर तुम और प्रकार का धूप न जलाना और न उस पर होम बलि और न अन्न बलि चढ़ाना और न इस पर अर्घ देना। मित्रों, केवल धूप जलाना है और वह भी एक विशेष प्रकार की धूप। याजक जब जब भीतर प्रवेश करके दीप जलाने के लिए जाते थे, तब तब उसे धूप जलाना आवश्यक था। यह वेदी प्रार्थना का प्रतीक है, क्योंकि बाइबल धूप को प्रार्थना का प्रतीक दर्शाता है। उदाहरण के रूप में देखें, दाऊद के भजन 141 उसके 2 में कहता है, मेरी प्रार्थना तेरे सामने सुगंध धूप ठहरे। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक भी प्रार्थना को धूप कहती है। फिर एक स्वर्गदूत सोने का धूप दान लिए हुए आया और वेदी के निकट खड़ा हुआ, और उसको बहुत धूप दिया गया कि सब पवित्र लोगों की प्रार्थनाओं के साथ सोने की उस वेदी पर जो सिंहासन के सामने है चढ़ाए। लुकार्ची सुसमाचार 1 अध्याय उसके 9 पद में हम पाते हैं, याजकों की रीति के अनुसार उसके नाम पर चिट्ठी निकली कि प्रभु के मंदिर में जाकर धूप जलाए। जकरिया लेवियों के गोत्र का सदस्य था और मंदिर में सेवा करता था। वह धूप वेदी पर सेवा कर रहा था। वैद्य लुका का वृतांत समय के क्रमानुसार है। जकरिया धूप वेदी पर सेवारत है। दूसरे शब्दों में, परमेश्वर ने 400 वर्षीय अपने मौन को तोड़ा है और जकरिया को एक संदेश दिया है। इस प्रकार धूप हमारे मध्यस्थ प्रभु यीशु मसीह का प्रतीक है। हारून आराधनालय में सेवा करता था और एक प्रकार से वह मसीह का प्रतीक है, परंतु मसीह वास्तव में मलकीसिदेक के क्रम में महायाजक था। इब्रानियों अध्याय 7 और इब्रानियों 9 में हम एक बड़ी विचित्र बात को देखते हैं। वहां धूपदान महापवित्र स्थान में रखा हुआ दर्शाया गया है। ऐसा प्रतीत होता है कि इब्रानियों का लेखक नहीं जानता था कि उसका स्थान कहाँ है, उसने उसे निर्गमन के अनुसार पवित्र स्थान में क्यों नहीं दर्शाया। इसका कारण यह है कि जब उसने पुस्तक लिखी थी तब पर्दा फटकर खुल गया था। मसीह ने वहां अपनी बलि दे दी थी, उसकी देह दो भाग हो चुकी थी, वह क्रूस पर मर गया था, वह स्वर्ग में चढ़ गया और यह धूप वेदी आज स्वर्ग में है। मित्रों, हम मसीह यीशु के द्वारा परमेश्वर के निकट आते हैं, वह हमारा मध्यस्थ है। मसीह स्वर्ग में है और वेदी उस स्थान को दर्शाती है जहां वह खड़ा है। जब हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं तब हम मसीह के द्वारा उसके निकट पहुंचते हैं। मैंने अनेक लोगों को कहते सुना है, अब क्योंकि मैंने मुक्ति पा ली है इसलिए मैं सीधा परमेश्वर के निकट आ सकता हूँ। जी नहीं, आप नहीं जा सकते हैं। आप परमेश्वर के पास केवल मसीह के द्वारा ही जा सकते हैं। वही है जो हमें परमेश्वर की उपस्थिति में ले जा सकता है। मसीह स्वर्ग में हमारे लिए प्रार्थना करता रहता है। इसराइल की संतान के लिए यह जानना अति आनंददायक होता था कि उनका महायाजक मिलाप के तंबू में गया है और धूप वेदी पर उनके लिए प्रार्थना चढ़ा रहा है। हमारे लिए भी यह एक बड़े आनंद की बात है कि हमारा महायाजक यीशु मसीह हमारे लिए प्रार्थना कर रहा है। मित्रों, यहाँ पर हमारे कार्यक्रम का समय समाप्त होता है, लेकिन मैं विश्वास करता हूँ कि निश्चित रूप से आप इस बात को जान गए हैं कि हमारा महायाजक प्रभु यीशु मसीह है जो स्वर्ग में है, जो आपके लिए और मेरे लिए प्रार्थना करता है। और हमने इस बात को भी जान लिया है कि हम सीधे परमेश्वर के पास नहीं जा सकते हैं, लेकिन मसीह के द्वारा से होकर के जा सकते हैं, क्योंकि वह हमारा मध्यस्थ करने वाला है। आज मुझे और आपको भी उसके पास जाने की आवश्यकता है ताकि हम अपने निवेदनों को उस तक पहुंचा सकें और उन आशीषों को जो हमारे जीवन के लिए हमें चाहिए पा सकें। जिस प्रकार से इसराइलियों ने तंबू में मध्यस्थता के लिए महायाजक को रखा, उसी प्रकार परमेश्वर ने हमें मसीह यीशु को दिया है ताकि वह हमारा मध्यस्थ बने। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें और प्रार्थना करें और परमेश्वर से मांगें कि वह हमारी सहायता करें। हमारे जीवित और सामर्थ्य परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं इस वचन के लिए, क्योंकि प्रभु आज आपने हमें फिर से इस बात का स्मरण दिलाया है कि आप जीवित हैं, पिता की दाहिने विराजमान है, और हम मनुष्यों के लिए जो पाप में डूबे हुए थे उसके लिए आपने अपने लहू को बहा दिया और आपने हमें बचा लिया है ताकि जो कोई आपके पास आता है आप उसका मध्यस्थ करें और उसे अपना जीवन अर्थात अनंत जीवन दें। पिता परमेश्वर, हमारे श्रोता भाई बहनों को आपकी निकटता में लाते हैं और विनती करते हैं कि आप उनकी सहायता करें ताकि वे भी आपसे प्रेम कर सकें। इसमें फिर से एक बार आज के इस वचन के लिए धन्यवाद देते हुए प्रार्थना आपके बेटे और हम सबके उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। दया से सुने और स्वर्ग राज्य में ग्रहण करें, आमीन।
प्रिय श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन। हम आशा करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम से आपको आत्मिक लाभ मिला होगा। यदि आप परमेश्वर के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं तो हमारे पास नया नियम एवं पवित्र शास्त्र बाइबल उपलब्ध है। तो यदि आप इन्हें प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें इस पते पर लिखें, कार्यक्रम सत्य वचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, नई दिल्ली 110019। पता एक बार फिर सुन लीजिए, कार्यक्रम सत्यवचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, न्यू दिल्ली 110019। और हाँ श्रोताओ, याद रखें कि पत्र लिखते समय आपका नाम और पता साफ साफ लिखा होना चाहिए। इसके अलावा आप हमसे टेलीफोन के माध्यम से भी बातचीत कर सकते हैं, जिसमें हमारे काउंसलर या सलाहकार आपको सलाह देंगे। तो नोट कीजिए, हमारा मोबाइल नंबर 9958820414। याद रखें 9958820414। इसके अलावा आप हमसे ईमेल के द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। और अब इसी के साथ हमारे कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, नमस्कार।
आंखें भरी और लब है लरजते, आए हैं बन के सवाली आ आंखें भरी और लब है लरजते, आए हैं बन के सवाली। रूह के मसासे भर दे मसीहा, लौटे न कोई भी खाली। आंखें भरी और लब है लरजते, आए हैं बन के सवाली। आंखें भरी और लब है लरजते, आए हैं बन के सवाली। नादिम है अपने गुनाह पे यीशु, गर्दन शर्म से झुकी है। नादिम है अपने गुनाह पे यीशु, गर्दन शर्म से झुकी है। बच जाएंगे पापी अगर एक नजर करम तूने डाली। आंखें भरी और लब है लरजते, आए हैं बन के सवाली। जन्म नया एक सबको आता हो, तू ही बसे धड़कनों में। जन्म नया एक सबको आता हो, तू ही बसे धड़कनों में। जीने के ढंग में मेरे मसीहा, तेरे हो खून की लाली। रूह के मसासे भर दे मसीहा, लौटे न कोई भी खाली। आंखें भरी और लब है लरजते, आए हैं बन के सवाली। आंखें भरी और लब है लरजते, आए हैं बन के सवाली। रूह की मसा से भर दे मसीहा, लौटे न को